खुद के इमोशंस को संभालते हुए आस्था ने दादाजी से कहा, नहीं नहीं दादाजी, कहीं नाश्ता ठंडा ना हो जाए, फिर आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। ये सोचकर हम जल्दी जल्दी भागते हुए आए हैं ना, इसलिए हम हाँफ रहे हैं, ऐसा कहकर आस्था ने बहाना बना दिया। तब दादाजी ने पूछा, लेकिन बेटा अरमान तो आ रहा है ना? आस्था ने मन ही मन में सोचा, दादाजी कम से कम अब तो उनका नाम लेना बंद कीजिए, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहते हैं। अभी आस्था दादाजी को जवाब देने ही वाली थी कि पीछे से अचानक अरमान की आवाज़ आई, यस दादाजी। अरमान की आवाज़ गूंजते ही आस्था का शरीर फिर से कांपने लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर अरमान की ओर नहीं देखा। उसने सोच लिया था कि वो बिल्कुल भी उसकी ओर नहीं देखेगी। अरमान के आने पर दादाजी खुश हो गए और बोले, मेरा बच्चा आ गया, तू आजा फटाफट से हमारे साथ नाश्ता कर। तुझे पता है आज आस्था बेटी ने सारा नाश्ता अपने हाथों से बनाया है, आजा फटाफट। ऐसा कहकर वे अरमान को डाइनिंग टेबल तक ले आए। तभी ध्रुव को आहान की आवाज़ सुनाई दी, भाभी प्लीज और कितना वेट करेंगे, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, अब तो अरमान भाई भी आ गए हैं। आहान आस्था को बुला रहा था। जल्दी ही आस्था वहां पहुंच गई और फटाफट से उसने सारी डिशेस जो उसने बनाई थी खोली। सभी लोगों की आंखों में चमक और मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वो डिशेस दिखने में ही बड़ी ही टेस्टी लग रही थी। आस्था ने सबसे पहले दादाजी को नाश्ता परोसा। तब दादाजी मुस्कुराकर बोले, बच्चा अब हम अपने आप ले लेंगे, तुम एक काम करो, पहले इन सबको सर्व कर दो, सब कैसे मेरी ओर घूर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब मेरी प्लेट में ही टूट पड़े। दादाजी के ये कहने पर आस्था मुस्कुरा दी। वहीं अरमान गहरी नज़रों से सिर्फ आस्था को ही घूर रहा था। जिस तरह से आस्था आज उसके कमरे में अचानक आ गई थी, उसे रह रहकर आस्था पर गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था, इसीलिए अपने हाथ में पकड़े चम्मच पर उसकी पकड़ बड़ी ही मजबूत थी। आस्था ने जल्दी एक एक करके सबको नाश्ता सर्व करना शुरू कर दिया और सभी काफ़ी खुश हो रहे थे। लेकिन तभी दादाजी बोले, बेटा अरमान को भी दो। दादाजी के अरमान को भी खाना सर्व करने के कहने पर आस्था की जान हलक में आ गई थी और वो सोचने लगी कि लगता है कि दादाजी की मुझसे कोई ना कोई पुरानी दुश्मनी है, जो बार बार मुझे शेर के मुंह में हाथ डालने को कह देते हैं। फिर आस्था बिना अरमान की ओर देखे जल्दी ही अरमान को नाश्ता सर्व करने के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी अरमान की आवाज़ों से सुनाई दी, ये ऑयली खाना है, इतना ज़्यादा ऑयली खाना दादाजी की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दादाजी आप ये सब खाना नहीं खाएंगे। अरमान ने जोर की आवाज़ में कहा, रमेश काका कहाँ हैं आप, ये सब क्या है, इतना ऑयली फूड दादाजी खाएंगे क्या, आपको नहीं पता है दादाजी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, उनके लिए ये खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अरमान के ये कहने पर आस्था अपनी उंगलियां आपस में मरोड़ने लगी। वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी, क्योंकि अरमान ने उसके बनाए हुए खाने को उसके मुँह पर ही रिजेक्ट कर दिया था, उसकी बेइज्जती कर दी थी। तभी रमेश काका वहाँ आ गए। जी साहब जी, अरमान गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोला, यहाँ पर कुछ लोग नए आए हैं, उन्हें नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इतना नहीं पता है कि दादाजी की सेहत के लिए ये खाना बिल्कुल ठीक नहीं है, जाओ जाकर दादाजी के लिए पहले दूसरा खाना लेकर आओ। दादाजी मन ही मन में सोचने लगे, ये मेरा खड़ूस पोता तो मुझे ये टेस्टी खाना खाने नहीं देगा और बेस्वाद खाना मुझे खिलाकर ही रहेगा, अब मैं क्या करूं, बीमारी का नाटक करके लगता है मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वे अपनी आंखों से सारा खाना स्कैन कर रहे थे। तभी आस्था ने जो पोहे की डिश बनाई थी वो उसने दादाजी के सामने बढ़ा दी। दादाजी ये हेल्दी रहेगा आपके लिए और ये मैंने आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है, आई होप आपको पसंद आएगा। जैसे ही आस्था ने पोहे के साथ कुछ फ्रूट्स कस्टर्ड वगैरह दादाजी के आगे सर्व किया, ध्रुव आस्था की तारीफ करते हुए बोला, दादाजी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये वाला खाना फ्रूट्स वगैरह ये सब आप ले सकते हैं और पोहा तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आप खा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ध्रुव के ये कहने पर अरमान खा जाने वाली नज़रों से ध्रुव की ओर देखने लगा, फिर इरिटेट होते हुए बोला, दादाजी अगर आपको ये कूड़ा कचरा खाना है तो खा लीजिए, लेकिन ये सब मैं नहीं खा सकता हूँ। तभी रमेश काका से, जाइए जाकर मेरा ब्रेकफास्ट लेकर आइए, अरमान ने रमेश काका को दूसरा ब्रेकफास्ट लाने के लिए कह दिया था। तभी दादाजी बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, तुझे ये सब नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन खबरदार अगर तूने हमारी बहू के बने हुए खाने के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू। दादाजी ने जल्दी ही अरमान को सबके सामने डांट दिया। अरमान की जहरीली बातें सुनकर आस्था ऑलमोस्ट मायूस हो गई, उसका मुरझाया चेहरा बाकी सब चारों ने देख लिया था। तब आंखों ही आंखों में आकाश ने सुमित से कहा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना देखो भाभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी पल रो देगी। यार जिसका पति डेविल किंग हो वो लड़की रोएगी नहीं तो क्या करेगी, सुमित ने कहा। यार भाभी की ऐसी शक्ल देखी नहीं जा रही है, हमें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा, आकाश ने कहा। ऐसा कहकर वे सब एक दूसरे को आंखों से इशारे करने लगे। आहान ने खाने की ओर देखते हुए कहा, अब आप सब लोगों की सारी बातें हो गई हों तो क्या मैं खाना स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि खाना देखने के बाद मुझसे अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसा कहकर आहान ने जैसे ही आलू पूरी और सब्जी खाई, पहला निवाला रखते ही स्वाद उसके मुंह में खुल गया और वो जोरों से चिल्लाया, वाओ इट्स सो यमी, ये शब्द कहकर आहान खाना खाने लगा। बाकी सब भी मजे से खाना खाने लगे।
अब क्या इन लोगों को हेल्थ का कोई इशू नहीं है? कहां गया इनका अपनी हेल्थ को लेकर इतना सारा ड्रामा? लेकिन फिलहाल अरमान गुस्से का घूंट पीकर रह गया और सोचने लगा, इस लड़की ने शायद कुछ ज्यादा ही इन सब लोगों पर जादू कर दिया है, जो ये सब इस तरह से इस लड़की की मक्कारी को समझ नहीं पा रहे हैं। अरमान मन ही मन में सोचने लगा, तुम चाहे कितने भी परपंच करो, लेकिन याद रखना, अरमान सिंघानिया के आगे तुम्हारी किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए अरमान गुस्से से आस्था को घूरने लगा, लेकिन आस्था ने एक बार भी नजर उठाकर अरमान की ओर नहीं देखा, क्योंकि आज गलती से वो अरमान के कमरे में चली गई थी। तब से उसे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और अरमान ने जिस तरह से उससे बात की थी वो बातें उसके दिलो दिमाग पर लग गई थी, क्योंकि वो अपने लिए इस तरह की बातें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दादाजी उन सबको इतनी खुशी खुशी खाना खाते हुए देखकर काफी खुश थे और सोच रहे थे कि काश अरमान भी एक बार बहू के हाथ का ये स्वादिष्ट खाना खा लेता तो उसे पता चलता कि आखिरकार घर की लेडीज के बने हुए खाने में कितना ज्यादा स्वाद है। आस्था साइड में खड़ी सभी लोगों को ध्यान से देख रही थी। बेटा, तुम भी बैठकर हमारे साथ नाश्ता करो, दादाजी ने कहा। दादाजी के ये कहने पर आस्था हैरान हो गई। वो भला इस तरह से उन लोगों के साथ कैसे बैठकर नाश्ता कर सकती थी? लेकिन दादाजी के बोलने के बाद ध्रुव फौरन खड़ा हुआ। भाभी, आप प्लीज यहाँ बैठिए, आप यहाँ आकर नाश्ता कीजिए प्लीज। सच में हम तो आज के बाद आपके बनाए हुए खाने के पूरी तरह से फैन हो गए हैं। इतना स्वादिष्ट खाना हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया, ध्रुव एक बार फिर आस्था की तारीफ करने लगा। ध्रुव का तारीफ करना आस्था को अंदर अंदर काफी ज्यादा खुशी दे रहा था, क्योंकि वो ध्रुव से इमोशनली ज्यादा अटैच थी, क्योंकि वो ध्रुव के जैसे ही मेडिकल फील्ड में अपना नाम कमाना चाहती थी। एक तरह से वो ध्रुव की काफी बड़ी फैन थी, तो ध्रुव से तारीफ पाना उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी।
अरमान अपनी खा जाने वाली नजरों से ध्रुव की ओर देखने लगा, लेकिन ध्रुव का ध्यान उस वक्त आस्था पर था। उसने अरमान की ओर एक बार भी नहीं देखा। ध्रुव ने अपनी चेयर पर आस्था को बिठा दिया और खुद उसे अपने हाथों से सर्व करने लगा। ये देखकर सब तीनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही अचानक उन तीनों की नज़र अरमान पर पड़ी तो अचानक से खाते खाते उन तीनों को ही एक साथ ठसका सा लगा, क्योंकि अरमान बड़े ही गुस्से और नफरत से ध्रुव की ओर देख रहा था। ध्रुव ने सोचा, इन तीनों को अचानक से एक साथ क्या हुआ? एक साथ ही इस तरह से क्यों खांसने लगे? अब आहान ने जैसे ही आंखों से अरमान की ओर इशारा किया, ध्रुव ने अरमान की ओर कन्फ्यूजन से देखा, तब तो उसको भी खांसी आनी शुरू हो गई। दादाजी उन चारों को डांटते हुए बोले, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तरह से कोई जल्दी जल्दी खाना खाता है क्या? देखो, तुम सभी को एक साथ खांसी आनी शुरू हो गई, चलो फटाफट से सबके सब पानी पियो। उन्होंने सभी को पानी पीने के लिए दिया, लेकिन आस्था, जिसे बार बार अपने ऊपर अरमान की गहरी नजरें महसूस हो रही थीं, उसे एक बार फिर अपना शरीर जलता हुआ सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने खुद पर हिम्मत कर रखी थी और एक बार भी अरमान की ओर नहीं देखा, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसे नहीं देखना चाहती थी। उसने सोचा, इस इंसान ने हमारे लिए इतने ज्यादा घटिया शब्द इस्तेमाल किए हैं, अब हम उसे देखेंगे भी नहीं। बहुत घमंड है ना इनको अपने स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग पर्सनालिटी पर, लेकिन हम इन्हें बता देंगे कि हमें इनके स्मार्ट और डैशिंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब सोचते हुए आस्था ने जल्दी ही आलू पूरी खाना शुरू कर दिया। हालांकि अंदर के अंदर वो डर भी रही थी, लेकिन अभी फिलहाल उसने आलू पूरी पर कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि वो उसका फेवरेट था। सभी लोगों ने अच्छे से नाश्ता कर लिया और अरमान ने केवल अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट, थोड़ा फ्रूट्स और ओट्स मिल्क और अपनी फेवरेट ब्लैक कॉफी ही पी थी। और उसके बाद वो फटाफट से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बोला, दादाजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जैसे ही अरमान जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा, दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो अरमान, तुम आज कहीं नहीं जाओगे। अरमान ने दादाजी की ओर एक आईब्रो उठाते हुए देखा, मानो आंखों ही आंखों में ये पूछना चाहता हो कि आखिर आप मुझे ऑफिस जाने से क्यों रोक रहे हैं। वो आज तुम तो क्या, बल्कि तुम चारों भी कहीं नहीं जाओगे, दादाजी ने कहा। दादाजी के ये कहने पर वे चारों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन दादाजी, क्या हो गया है? और हम चारों आज कहीं क्यों नहीं जाएंगे? क्या बात है, बताइए। दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आहान में कहा। हाँ दादाजी, बताइए क्या बात है, आप ठीक तो है ना, ध्रुव ने टेंशन भरी आवाज में कहा। दादाजी, आपको अगर कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आज कहीं नहीं जाएंगे, बताइए क्या बात है, आकाश और सुमित ने कहा। उन सबके एक साथ ये कहने पर दादाजी मुस्कुराकर बोले, मेरे बच्चों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम सब मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दोगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना।